उद्धव जी ने कहा, अच्छा महाराज आपके पूजा की विधि क्या है? कहने लगे, भाई मेरी तरह तरह की मूर्ति होती है, कोई पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, कोई लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, कोई लोहे की, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई मणियों की, इस प्रकार की मूर्ति बना करके, और उनमें दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं, एक चल मूर्ति एक अचल मूर्ति। कहते हैं मेरे मंदिर में इन दोनों मूर्तियों को रख दिया जाता है, जिस समय में उत्सव वगैरह होते हैं चल मूर्ति का वहां पर जलसा निकलता है और उत्सव मनाते हैं, यात्रा निकलती है, और अचल मूर्ति वहीं पर रहती है। मेरी पूजा करो, उस समय में मेरे सुनंद आदि पार्षद हैं उनकी भी पूजा की जाती है, मेरे शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, मेरे वस्त्रों की भी पूजा की जाती है, मेरे स्वरूप का फिर ध्यान करें। मेरा स्वरूप है कि तप्त जाम्बू नदा प्रख्यम और शंख चक्र गदाम्बुजे लस चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा आदि से मेरा चार भुजाएं हैं, मेरी चारों भुजाओं में चारों प्रकार के आयुध हैं, ये देदीप्यमान है, श्रीवत्स आदि का चिन्ह है। इस प्रकार से मेरा जो स्वरूप जो पीताम्बर आदि धारण कर रखे हैं, और ऐसे मेरे स्वरूप के सामने प्रणाम करें, और प्रणाम करने के लिए कहते हैं कि शिरा और शिरो मत पादयो कृत्वा, मेरे दोनों चरणों में तो सिर रख देवे, और हाथ को पसार करके, हाथ को यूं लंबा फैला करके, और शरण में आकर के कहे कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से वो मेरी शरण हो जाए, ऐसा कहकर के मेरी पूजा करे। और भाई मदर्चाम सम प्रतिष्ठाप्य मंदिरम कारये दृढ़म, और कोई व्यक्ति मेरा मंदिर कराता है और वहां पर पुष्प का बगीचा लगाता है, कहते हैं वहां पर पूजा की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं अंत में अपनी सारष्टी माने मैं अपने स्वरूप के अंदर ही उसको बैठा लेता हूं, इतना बड़ा उसका पुण्य होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की और देवताओं की वृत्ति का हरण करता है, चाहे खुद के द्वारा दी हुई वृत्ति हो चाहे दूसरे के द्वारा दी हुई वृत्ति हो, वो अंत में जाकर विष्ठा का कीड़ा बनता है, लाखों वर्षों तक वो वहीं पर पड़ा रहता है। इसलिए ब्राह्मण की और देवता की वृत्ति, मंदिर की वृत्ति का कभी उच्छेदन नहीं करना चाहिए। तो उद्धव तुमने क्रिया योग की बात बीच में पूछ ली, मैं अपने मन से देखो अब तुमको बात बताता हूं। किसी के स्वभाव की न तो निंदा करे न प्रशंसा करे, सब मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार से समझे। जैसे इंद्रियां तेज से निंद्रियापन्ने निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतन है मायाम प्राप्नोति मृत्युम वा तद्व नानार्थ दृक् पुमान। देखो जिस समय में गहरी नींद आती है, इंद्रियां भी अज्ञान में लीन हो जाती है, उस समय में हमको ये ज्ञान नहीं रहता हम कहां हैं, हम कौन हैं, कहां पड़े हैं, क्या नाम है, क्या धाम है, कौन हमारा है, नहीं कुछ भी हमको ज्ञान नहीं रहता उस समय में। या तो माया या इसी ऐसी स्थिति का नाम माया है। कहते हैं इसी माया के द्वारा पहले वो नाना प्रकार का स्वरूप देखता था और अब वह बिल्कुल भी नहीं जानता है, नाना प्रकार का स्वरूप देखने वाला अब कुछ भी नहीं देखता है, नष्ट चेतना है, उसकी चेतना नष्ट होती है। तो ये माया है, कभी देखना और कभी नहीं देखना, इसका नाम माया है। तो देखो वस्तुतः माया भी परमात्मा की है। दो किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्य अवस्तु न कियत, द्वैत नाम की कोई वस्तु है नहीं, कौन अच्छा और कौन बुरा ये केवल वाणी से कहा जाता है, सब झूठा, और जो मन से सोचा जाता है वो भी झूठा, इनकी वास्तविक सत्ता है नहीं। जिस प्रकार से ध्वनि करने पर एक प्रतिध्वनि आती है, कुएं के पास में जाकर कोई बोलो कुएं में से वापिस आवाज आएगी, ये सब दिखता है वास्तव में नहीं है। इसी प्रकार से मन से वाणी से जो कुछ कहा जाए सुना जाए दिखता है, वास्तव में वो सत्य नहीं है। सत्य एक परमात्मा है, वही संसार को बनाते हैं और वही इसकी रक्षा करते हैं, और बनाते क्या, वो स्वयं ही बनते हैं और स्वयं ही स्वयं का हरण करते हैं और स्वयं ही हरण कर लिए जाते हैं। एक परमात्मा ही परमात्मा है। उद्धव जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, आत्मा है उसका तो कभी जन्म होता नहीं, और देह है उसका जन्म होकर के यहां नाश हो जाता है, फिर आगे जाकर कर्मों का फल कौन भोगता है? भगवान कहते हैं देखो भाई, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये आत्मा शरीर इंद्रियां प्राण इन सब को वो अपनी ओर आकर्षित करता है, तब तक न होने वाला संसार भी इसको यथार्थ सा दिखता है। जैसे अंगुली को यहां नेत्र के यहां रखेंगे सब दो दिखेंगे, नहीं होते हुए भी दो दिखेंगे, क्यों दिखेंगे कि अंगुली को हमने नेत्र के यहां रख दिया, इस कारण से दो दिखेंगे। ऐसे ही जब तक ये अहंकार रहता है तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर रहता है। अहंकार क्या है? ये शरीर को मैं मानना, शरीर को मेरा मानना, इंद्रियों को मैं मानना, मेरा मानना, ये अहंकार है। यही अहंकार का ही जन्म और मृत्यु होती है, न तो आत्मा का होता है। और शरीर का तो भाई मृत्यु के बाद नाश हो जाता है, फिर किसका जन्म होता है? ये अहंकार ही प्राणों को और इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को और चेतन को सबको लिया हुआ है। एक ऐसा पुंज है भाई, इनका अभिमान करने से जीव ही जो कि महान है, कभी सूत्रात्मा है, तरह तरह की उपाधि को धारण करता है। ये मुक्त होने से पहले भी जीव है, नित्य है, मुक्त होने के बाद भी और बीच में भी वैसा का वैसा ही है। अपने स्वरूप को भूल गया, जैसे सोना है वो गहने से पहले भी सोना है, गहने के समय में भी सोना है, और गहने के न रहने के बाद भी वो सोना तो सोने में ही रहेगा। ऐसी जितनी प्रतीतियां हैं, ये सब प्रतीति वास्तव में हमारे सामने मिथ्या प्रतीत हो रही है। इन सब का परम प्रकाशक एक परमात्मा है। अब उस परमात्मा का ज्ञान कर लोगे तो भाई कोई इंद्रियां बस में होक न हो, मन बस में होक न हो, ये बात है ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के बाद इंद्रियां स्वतः वश में रहती है, मन स्वतः वश में रहता है। भाई जिस प्रकार से आकाश में यदि खूब तूफान मचा हुआ है, सूर्य का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसी प्रकार से आत्मज्ञानी को जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर इंद्रियां बस में होक, मन बस में होक न हो, इससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को मेरी भक्ति के द्वारा रजोगुण का नाश करना चाहिए, मन का मैल दूर कर लेना चाहिए, और मन के मैल को दूर करके और मेरी प्राप्ति में लग जाना चाहिए। सबको असत समझना चाहिए। और भाई ये शरीर मिला है, ये शरीर मेरी प्राप्ति के लिए मिला है। कभी कभी रोगग्रस्त हो जाए तो किसी औषध से या और किसी उपाय से कष्ट निवृत्ति करके भी केवल मेरी प्राप्ति में इसको लगाना चाहिए, सुख भोग के लिए ये शरीर नहीं है। इस प्रकार से जो चलता है उसके सामने कोई साधन में बाधा नहीं आती। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि वाह महाराज, कैसा विचित्र आपने ज्ञान दिया है, स्वरूप की बात बताई है, परंतु महाराज हमको और ज्यादा सरलता का साधन बताओ। माने संसार दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, आप इसका हम निषेध करेंगे तब हम आपके ज्ञान में स्थित होंगे, तो महाराज ये थोड़ा कठिन ज्ञान पड़ता है हमारे लिए, आप इसको सरल करके समझाओ। ध्यान से सुन रहे हो, भागवत का सार चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि अच्छी बात है, अब मैं इतना सरल करके ज्ञान कहता हूं कि जिससे आप दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। देखो मनुष्य को अपने कर्म जितने भी करें, वो जितने भी वो कर्म करता है वो मेरे अर्पित कर देवे, और अपना मन है, अपना चित्त है, ये मुझे अर्पित कर देवे, पुण्य देश में जावे, संतों का संग करे, और समय समय पर सत्संग करता रहे, पर्व यात्रा महोत्सवम मेरे लिए उत्सव करता रहे, मेरे लिए यात्राएं करता रहे, मेरे लिए नाचना गाने का आयोजन करता रहे, संपूर्ण भूतों में मैं बाहर भीतर सब जगह आकाश के समान निर्मल निर्विकार रूप से हूं, इस बात को अच्छी तरह से जाने। इति सर्वाणि भूतानि मदभावेन महाद्युते सभाजयन मन्यमानो ज्ञानम केवलम आश्रित है। उस केवल ज्ञान को लेकर के वो ये समझे, माने उसके मन में ये बात रहनी चाहिए कि ब्राह्मण हो और चाहे चंडाल हो, चाहे चोर हो और चाहे ब्राह्मणों का भक्त हो, चाहे सूर्य हो और चाहे स्फुलिंग माने छोटा सा कोई अग्नि का कण हो, चिंगारी हो, अक्रूर हो चाहे क्रूर हो, जो पंडित होता है, इन सब में एक मेरे ही स्वरूप को समान रूप से विद्यमान स्वरूप है उसको देखने वाला होता है। इस प्रकार से सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में जो मेरे भाव को देखने वाला होता है उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। स्पर्धा, असूया, तिरस्कारा, साहंकारा, वियंती। देखो काम क्रोध लोभ के लिए नहीं कहा, इन दोषों के लिए कहा है, स्पर्धा, असूया, तिरस्कारा, क्यों? ये बहुत सूक्ष्म दोष होते हैं, ये साधना में आगे तक चलने वाले दोष हैं। स्पर्धा है, असूया है, तिरस्कार है, अहंकार है, ये आगे तक दोष रहने वाले हैं। अतः कह दिया कि जो सब जगह मुझे देखने वाला है उसमें सूक्ष्म दोष भी नहीं रहते तो और स्थूल दोष तो रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लोग यदि हंसे तो हंसने दो, अपने तो सबको मेरा स्वरूप मान करके, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे पशु हो, सबको प्रणाम करता रहे। लोग हंसे तो हंसने दो, अपने तो अपनी मस्ती में रहना चाहिए। दृशम ब्रीडांच देही किम है, चाहे हमारे शरीर से हम प्रणाम करते हो और लोग हंसते हो तो उनको हंसने दो और उनकी हंसी उनके पास है, अपने को तो आत्मकल्याण करना है, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। जब तक संपूर्ण प्राणियों में ऐसा भाव न हो जाए तब तक ऐसा करते ही रहना चाहिए। इस प्रकार से जब उसकी आत्म मनीषा आत्म चिंतन बढ़ता जाएगा तब उसके मन में रहेगा कि ओह सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, और ऐसा जब परमात्मा का स्वरूप मान लेगा तब कौन तो कर्ता और कौन भोगता, किसकी तो इच्छा करे और क्या हमको मिलेगा और क्या निहाल करेगा, मतलब भेद बुद्धि, ये भेद के कारण से कामना पैदा होती है कि ये काम्य है और ये कामना है, इस कामना की पूर्ति काम्य से होगी, ये भेद बुद्धि रहती है तब तक दोष है। जब सब कुछ परब्रह्म परमात्मा ही है, भाई जल के सरोवर के अंदर डुबकी लगा रहे हैं तो इस जल में कौन सा तो अपना है कौन सा पराया, सब एक जल ही जल है। इसी प्रकार से सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा, ऐसा जानने वाला सबसे उपराम हो जाता है, सारे संशयों से निवृत्त हो जाता है। और ये सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ है ये उपाय कि संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव रखे, मन से वाणी से शरीर से चेष्टाओं से उसके यही बात रहनी चाहिए कि परमात्मा सब जगह है, यही बुद्धिमानों की बुद्धि है और मन और विचारशीलों का विचार है कि यत सत्यम अनृते ने है, इस नश्वर शरीर से एक हम सत्य तत्व को प्राप्त कर ले, मर्त्य न आपनोति मामृतम, मरण धर्मा शरीर से अमर तत्व को प्राप्त कर ले, इसी का नाम ज्ञान है, बुद्धि है, मनीषा है, सबसे ऊंचा विचार है, यही सबसे ऊंची बात है। तो ये बात हमने आपको हे उद्धव जी सुना दिया है, इस समय में आप एकांत में थे, आपका भाव है इसलिए हमने सुना दिया। ये हमने आपको सनातन वेद की गुप्त से गुप्त बात बताई है, ये आप मेरे भक्तों को कहना, उन्हीं के बीच में बैठ करके ये ज्ञान की बात कहना, ज्ञान दीपेन दर्शयन और ज्ञान रूप से देखते हुए सबको पवित्र करना। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस बात को सुनता है उसकी मेरे में पराभक्ति होती है और वो लेश मात्र भी कर्म से नहीं बंधता है। हे उद्धव अपिते विगतो मोह है, मैं समझता हूं कि इतनी मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे अंदर कोई मोह नहीं रहा होगा, मेरे इस आख्यान को मेरे इस ज्ञान को हर किसी आदमी के सामने मत कहना, नास्तिकों के सामने, शठों के सामने, दाम्भिकों के सामने और अभक्ताएं और कोई अभक्त पुरुष है उनको मत कहना, दुर्विनीत को मत कहना, सुनने की इच्छा नहीं करता उनको मत कहना, खल को मत कहना, ये तो किसी पवित्र व्यक्ति को कहना, दोषे विहीन आए जो दोषों से रहित है उसे कहना, ब्राह्मणों में प्रेम करने वाला है उनसे कहना, और भाई नैतद विज्ञा ये जिज्ञास, और इसको जो जान लेता है उसके लिए अब फिर जानने की कोई बात बाकी नहीं रहती है। हे उद्धव मैंने आपको ऐसा अमृत पिलाया है कि अब और कोई तुम्हारे लिए पीने लायक शेष रहा ही नहीं है, अशेष अमृत मैंने तुम्हें पिला दिया है। ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंड धारणे यावान अर्थो नाम तात है तावास्ते हम चतुर्विधय, ज्ञान से जाओ चाहे कर्म से जाओ किसी भी उपाय से जाओ वहां पर मैं सब उपायों से तुम्हें प्राप्त हो सकता हूं। जिस समय में मनुष्य अपने समस्त कर्मों का त्याग करके अपने आप को मुझ में अर्पित कर देता है तभी वास्तव में वो अमृतत्व का अधिकारी होता है और वो अपने स्वरूप के ज्ञान का पूर्ण सामर्थ्य रख करके मेरी ओर चल सकता है। भगवान इतना कहकर के चुप होवे, हाथ जोड़ करके उद्धव जी उनके पास आए और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया कि महाराज आपने हमारे मुंह के अंधकार को दूर कर दिया है, आप एक ऐसे सूर्य हैं कि जिनके उदित हो जाने के बाद मेरा शैत्य और मेरा अंधकार और मेरी भीति तीनों के तीनों समाप्त हो गई। सूर्य उदित होते हैं तो तीन चीज समाप्त होते हैं, अंधकार समाप्त होता है, एक शीतलता है ठंडक लगती है ये समाप्त होती है, एक भय लगता है वो समाप्त होता है, तो ये तीनों चीजें आज समाप्त हो गई। महाराज जिस आदमी को आपके चरणों की शरण मिल गई है उस आदमी को क्यों नहीं शांति मिलेगी, सब कुछ उसको मिलेगा, आज मेरा सारा संदेह दूर हो गया, कुछ मेरा संसार में कौटुंबिक स्नेह था वो भी आपने ज्ञान की तलवार से समाप्त कर दिया है, तो हे महायोगिन मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे जैसी आज्ञा देवे वैसा करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा उद्धव तुमने बड़ी निष्ठा के साथ मेरा ज्ञान सुना है, जाओ मेरे चरणों से पवित्र वे तीर्थों से भरे हुए उस बद्री आश्रम में तुम चले जाओ, अलकनंदा जहां बह रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जहां स्नान करते हैं वहां जाकर एकांत सेवन करो और मेरे ज्ञान को तुम अपने हृदय में धारण करो। हे परीक्षित, ये ज्ञान सुनने के बाद उद्धव जी ने भगवान को परिक्रमा की। वास्तव में भगवान को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा थी। वे बड़ी मुश्किल से भगवान के चरणों में प्रणाम करके उठे और जाने लगे तो भगवान को देखते रहे। वे मुंह के बल पर नहीं, पीठ के बल पर चल रहे थे, और चलते 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 जब तक भगवान दिखते रहे तब तक उन्होंने अपनी दृष्टि भगवान पर ही रखी और नमस्कृत्य ययौ पुनः। भगवान के दर्शन करते करते जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उनको प्रणाम करके और फिर वे बद्री का आश्रम की तरफ रवाना हो गए यथोपदिष्टाम। और जैसा उन्होंने ज्ञान दिया उस ज्ञान को उन्होंने धारण करके फिर तपस्या में वे स्थित हो गए। सच पूछा जाए उद्धव जी महाराज ने इतना विलक्षण ज्ञान लिया है भगवान से उनके चरणों की सेवा करने से कि वो ऐसा दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान संसार में आज भी जो भी कोई श्रद्धा से सुनता है उसके लिए मुक्ति का ये महान साधन बनता है। वास्तव में देखा जाए भव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृतोपजर्रे भृंगवाद वेद सारम अमृतम उदतितश्चापायत भृत्य वर्गान पुरुषम ऋषभ माध्यम कृष्ण संयम नतोस्मि। भगवान तो भाई संसार के भय को दूर करने के लिए आए थे। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान की जो सार बात है जो कि शास्त्रों से उन्होंने निकाली है, और शास्त्रों से जैसे कोई भंवरा है पुष्पों में से सार निकालता है, ऐसे सारे शास्त्रों से सार निकाल करके, और वो जैसे सागर में से अमृत नहीं निकलता है ऐसे उन्होंने सब शास्त्रों का सार और अमृत निकाल करके अपने सारे के सारे भक्त लोगों का कल्याण करने के लिए उद्धव के बहाने से कहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। राजा ने कहा महाराज उद्धव जी के चले जाने के बाद फिर द्वारिका में क्या हुआ? और महाराज ब्राह्मणों का शाप तो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, फिर ब्राह्मणों का शाप भगवान पर लगता भी नहीं है। भगवान ने फिर भी अपना वो लोक मनोरम श्री विग्रह था जिसके द्वारा उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की थी। लीलाएं कानों से सुनने पर मन को पवित्र करती हैं, लीलाओं को आंखों से देखते हैं तो मन को पवित्र करती हैं। ऐसा अपना दिव्य रूप था, उस दिव्य रूप को किस प्रकार से उन्होंने अपने में समेटा जरा ये हमको बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी पर, अंतरिक्ष पर और आकाश में सब जगह बड़े भारी उत्पात होने लगे। भगवान उस समय में सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उन्होंने बड़े गंभीर भाव से यदुवंशियों से कहा कि हे यादवों, देखो इस समय में घोर उत्पात प्रकट हो गए हैं। ये द्वारिका अब अपने लोगों के लिए ठहरने के लिए नहीं है। वयम प्रभासम यास्याम, 7 दिन के बाद ये द्वारिका यहां पर जलाप्लावित हो जाएगी, जल जल हो जाएगा। इसलिए अपने को प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए जहां पर सरस्वती पूर्व की ओर होकर चलती है, और वहां जाएंगे, देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देंगे, और उसके बाद हम लोग अपने तीर्थ सेवन के द्वारा कल्याण करेंगे। भगवान की बात सुनी। भगवान की बात सुनने के बाद सब यदुवंशी वहां अपने अपने रथों में बैठ करके तरह तरह की सामग्री लेकर वे प्रभास क्षेत्र की ओर रवाना हुए। भगवान की आज्ञा जो थी उनको, प्रभास क्षेत्र में आए, बहुत उन्होंने दान दिया, सब प्रकार से उन्होंने उत्तम कर्म किए, और ततः तस्मिन महापानम पपुर मैरई एकम मधु दिष्ट अभिभ्रंशत दियो यद्रवैर भृष्यते मति। कहते हैं उसके बाद उन्होंने मैरयक नाम का मधु पिया। उस मधु के पीने से ऐसा उनके नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि वे आपस में संघर्ष करने लग गए। उनको ये पता नहीं कि हम किन के साथ लड़ रहे हैं। वस्तुतः परीक्षित ये सब कृष्ण की माया से मूड हो गए थे, अतः भाई भाई से के साथ लड़ पड़े और पिता पुत्र के साथ लड़ पड़े, चाचा भतीजा लड़ मरे, प्रद्युम्न सांभव प्रद्युम्न और सांब लड़ लिए, ये कोई बात थी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कुछ ऐसा ही वहां पर संकल्प था, आपस में लड़े। लड़ते लड़ते इनके शस्त्र टूट गए, शस्त्र नष्ट हो गए, रथ भी इनके नष्ट हो गए। तो वहां समुद्र के पास किनारे पर जो घास उगा था, एरक घास उगा हुआ था, उसका जाकर जो ही स्पर्श किया तो वे सब के सब वे परिख बन गए, माने मुद्गर बन गए और फिर उनसे आपस में युद्ध करने लगे, सब के सब लोग मारे गए। भगवान ने देखा कि बलराम जी महाराज है वो भी समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए हैं और योग में स्थित होकर अपना दिव्य मनोरम जो स्वरूप है उस स्वरूप को उन्होंने अपने में ले लिया है और केवल एक देह की आकृति वहां पर रखी है। वे अपने लोक में चले गए हैं, अब अपने को भी यहां से जाना चाहिए। बलराम जी हमसे पहले आए थे और हमसे पहले गए हैं, तो अब ठीक है हम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। भगवान फिर वहां एक पीपल के सहारे विराजमान हो गए। भगवान उस समय चार भुजाओं में विराजमान है। भगवान की कांति बहुत दूर तक फैल रही है, सब दिशाओं से अंधकार हट गया है और श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्षस्थल पर है, कौस्तुभ मणि धारण की हुई है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उनके नील कुंतल मंडिताम नीले नीले बाल हैं, वो बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, कमल के समान उनके नेत्र खिले हुए हैं, मकराकृति कुंडल जगमगा रहा है और पीताम्बर भी फड़क रहा है। कौस्तुभ मणि से विराजमान वलमाना पहनी हुई है और भगवान उस समय में अपने दाहिने गोड़े पर बायां चरण रख रखा है। उसी समय में इधर उस मूसल का थोड़ा सा जो लोह का अंश बचा हुआ था उसको एक जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण के अग्रभाग पर लगा रखा था। वो शिकारी उस जंगल में फिर रहा था, घूम रहा था। उसने बहुत दूर से भगवान का अत्यंत सुकोमल चरण देखा। चरण देखते ही मन में विचार आया कि ओहो ये कोई हरिण है। हरिण का विचार करके उस चरण का निशाना लगा करके जोर से उसने बाण को चलाया और जो ही बाण आकर भगवान के चरणों में लगा तो वो दौड़ा दौड़ा आया देखने के लिए कि मेरा शिकार क्या है। तो आगे जाकर देखा है कि भगवान चतुर्भुज से विराजमान उनके चरणों में मेरा ये बाण लगा है। पादेव और असुरत विषय कहते हैं कि उस समय में जाकर भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, महाराज मुझे मालूम नहीं था कि आप यहां विराजमान हो। महाराज आप तो सब लोगों के अज्ञान को दूर करने वाले हो, तो मेरे अंदर ये कहां अज्ञान रहने दिया। मैंने आपके चरण को मृग समझ लिया, ये अज्ञान नहीं तो क्या था। महाराज मैंने बड़ी भारी गलती कर दी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे, देखो जरा तुमने बाण लगाया है अज्ञान से, लेकिन मैंने बाण खाया है मेरे ज्ञान से, इसलिए त्वम याहि त्वम मद अनुज्ञात है स्वर्गम सुकृत नाम पदम। जाओ कामेश कृतो ही में, सब कुछ मेरी ही माया थी, तुमको अब यहां से स्वर्ग में भेजता हूं, स्वर्ग में जाओ मेरी आज्ञा है। भगवान को उसने तीन परिक्रमा की प्रणाम किया और भगवान के संकल्प से क्या नहीं हो सकता। तत्काल एक दिव्य विमान आया और उस दिव्य विमान में बैठ करके और वो जरा नाम का शिकारी वो भगवान के उस स्वर्ग में चला गया। इधर भगवान का जो सारथी दारुक भगवान के चरण चिन्हों को देखता हुआ इधर उधर देख देख करके वो वहां आ गया जहां पर भगवान विराजमान थे, क्योंकि जहां भगवान रहते हैं उनकी वनमाला की सुगंध बहुत दूर तक फैलती है। उनके चरणों में रहने वाली तुलसी सबको सुवासित करके आकृष्ट करती ही है। तो दारुक को भगवान कहां विराजमान है इस बात को जानने में देरी नहीं लगी और तत्काल वे भगवान के पास में आए। जब देखा कि भगवान के चरणों में तो बाण लगा हुआ है, भगवान अकेले अश्वत्थ का सहारा लेकर पीपल का सहारा लेकर विराजमान है, उस समय में दारुक स्नेह के अंदर परिप्लुत होकर उनके चरणों में आकर गिर गया और कहने लगा, महाराज जब से आपके चरणों के दर्शन नहीं हो रहे हैं तब से मुझे संसार एकदम अंधेरे में दिखाई दे रहा है। यहां संसार में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, न मुझे दिशाएं दिखती है, न मेरे मन में शांति है। क्या बताऊं महाराज, पधारिए, आपके बिना न द्वारिका की शोभा है, न पृथ्वी की शोभा है, न इस रथ की शोभा है, न हमारी शोभा है। उस समय में देख वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है तो देखते देखते ही वो रथ भी गायब हो गया, घोड़े भी गायब हो गए, भगवान के जो दिव्य अस्त्र थे वो सब गायब हो गए, अदृश्य हो गए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो दारुक, मैं जिस काम के लिए यहां आया था वो काम मैंने पूरा कर लिया है। तुम जाओ द्वारिका में, सबको जाकर कह दो कि संकर्षण भी अब नहीं रहे और ये कृष्ण भी यहां नहीं रहा है, सब भाई बंधुओं को हमारी दशा को सुना देना और मैं कहता हूं कि अब द्वारिका में आप लोगों को नहीं रहना चाहिए, किसी को भी नहीं रहना चाहिए। द्वारिका अब समुद्र में डूबने वाली है, हमारे जितने वहां प्राणी है, सगे संबंधी स्त्री पुत्र आदि जो भी कोई वहां है उन सबको आप मेरा संदेश दे देना, कि ये अर्जुन के द्वारा रक्षित इंद्रप्रस्थ में चले जाएं, अर्जुन के साथ चले जाएं और अर्जुन आप सब की सेवा करेगा, आप सब की रक्षा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और दारुक, तुमने तो बहुत बार हमारा ये रथ चलाया है, बहुत बार हमारे मुख से तुमने ज्ञान की बात सुनी है। सारा संसार एक माया ही तो है, स्वप्न ही तो है, इसकी उपेक्षा करके तुम रहो और बड़े वैराग्य पूर्वक शांति के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत करो। देखो दारुक, जल्दी करो, मेरी आज्ञा है, तुमको जल्दी यहां से रवाना हो जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से दारुक ने भगवान की वो बात मानी, भगवान के चरणों में प्रणाम करके दुर्मना होकर वहां से रवाना हो गया। अब भगवान वहां, यूं तो भगवान में सब लोग समाये हुए ही है, लेकिन लीला दृष्टि से भगवान अकेले विराजमान है। उस समय में ब्रह्मा जी आए, भवानी के साथ शंकर आए, देवताओं के साथ इंद्र आए, प्रजापतियों के साथ मनु आए, गंधर्व सिद्धों के साथ पितर आए, महोरग विद्याधरों के साथ चारण आए, किन्नर अप्सराओं के साथ यक्ष और राक्षस आए। सबके मन में यह था कि भाई भगवान के प्राकट्य को जैसे हमने सबने मिलकर के नहीं देखा, उस समय तो कंस का भय था, लेकिन भगवान ने इस समय में पृथ्वी से सर्वथा भय मिटा दिया है, तो भगवान का कम से कम लीला संवरण का दृश्य है वो तो हम देख ले। इस प्रकार से सब आकाश के अंदर विद्यमान है, अपने अपने विमानों में बैठे हुए हैं और अपने हाथों में वे बड़े अच्छा दिव्य पुष्प लेकर आए हैं और एक साथ सब भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। थोड़ा सा अपने नेत्र कमल को ऊपर किया और देखा कि ओहो, मेरी विभूतियां हैं सब, ब्रह्मा भी वहां आए, सब देवता लोग आए, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको देखने के बाद भगवान ने देखते ही देखते अपने दोनों नेत्र कमल थे, दोनों नेत्र कमल को उन्होंने बंद किया और बंद करने के बाद जो इतने दिन तक भगवान का दिव्यादि दिव्य मनोभिराम जो श्री विग्रह था, जिसकी धारणा करने से, जिसका ध्यान करने से सब प्रकार से मंगल ही मंगल होता है, भगवान ने अपने दिव्य माया के द्वारा उसको अपने आप में ऐसे ही समेट लिया और देखते देखते वो अदृश्य हो गया, बिना जलाए लीन हो गया और भगवान का वो दिव्यादि दिव्य तेज भगवान के धाम में जाकर विराजमान हो गया। देवताओं ने धुंधवियां बजाई, फूलों की वर्षा की और सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवता है, ब्रह्मा आदि है, उन्होंने देखा कि ओहो भगवान, तो देखो हमने सोचा था कि वो हमारे बीच में से जाएंगे, यूं जाएंगे, देखो भगवान का धाम भी सब जगह है, भगवान का रूप भी सब जगह है, भगवान की लीला भी सब जगह है, लेकिन उन लीला को देखना और समझना ये बात सब जगह नहीं है। आकाश में कैसे बिजली चमकती है और कैसे लीन हो जाती है, ऐसे ही भगवान गतिर्न लक्ष्यते मर्त्य तथा कृष्णस्य दैवतैः कहते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को कुछ नहीं समझा, माने उसके रहस्य को वे नहीं समझ पाए और फिर अपने अपने धाम में सब चले गए। देखो राजन, भगवान इस सारे संसार को बनाते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं और कितना कितना वो व्यवहार करते हैं, और जो भगवान यमलोक में गए वे अपने गुरु के पुत्र को ला सकते हैं और अपने ही माता के छह पुत्रों को वे बलि राजा के वहां से ला सकते हैं, क्या वे भगवान यहां अपने शरीर को सदा के लिए उस रूप में नहीं रख सकते थे? जरूर रख सकते थे। क्या उनका शरीर एक शिकारी के बाण से जा सकता था? नहीं जा सकता था, लेकिन भगवान एक बहुत बड़े आदर्श को स्थापित करने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने शरीर को अदृश्य करके बताया है कि भाई शरीर के साथ मैं भी सदा नहीं रहा, तो हे प्राणियों तुम कैसे रहोगे, और इस शरीर के साथ तुम्हें भी प्रेम नहीं करना चाहिए। नैचत प्रणेतुम वपुरत्र शेषितम मर्त्येन किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का परमधाम गमन का जो ये आख्यान है, इसको जो सुनता है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। अस्तु, इधर दारुक द्वारिका में आया, वसुदेव और उग्रसेन से जब ये बात कही, इतना उनका श्री कृष्ण में मन था, इतना प्रेम था कि बहुत से लोग वसुदेव जी देवकी तो इस बात को सुनकर के वहीं अचेतन होकर, वहीं पर शोक से मूर्छित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए और वे सब समाप्त हो गए। बहुत थोड़े बहुत जो प्राणी बचे उनको लेकर बहुत दुखी होकर अर्जुन द्वारिका से रवाना हुए और द्वारिका से रवाना होकर इंद्रप्रस्थ में आ गए और वहां रहने लगे। इधर पांडवों ने देखा कि जब भगवान यहां नहीं है तो फिर हम लोगों को यहां क्यों रहना है। उन्होंने वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया और तुमको ये यहां हस्तिनापुर का राजा बना दिया, और उसके बाद वे अपने इस राज्य को छोड़ करके उत्तराखंड की तरफ चले गए इस प्रकार से भगवान की हमने आपको बड़ी पवित्र कथाएं सुनाई है। इन कथाओं को जो व्यक्ति सुनता है, परमहंस जिस स्थान पर जाते हैं वो गति उन महात्माओं को, उन पुरुषों को मिलती है जो इस कथा को सुनते हैं। इसके साथ ही 11वां स्कंद पूरा हुआ, अब 12वां स्कंद चलता है। 12वां स्कंद आश्रय स्कंद है, माने जिस प्रकार से चरणों पर सारा शरीर टिका हुआ है, इसी प्रकार से परमात्मा पर सारा संसार टिका हुआ है, अथवा 12वें स्कंद के ऊपर संपूर्ण श्रीमद् भागवत टिका हुआ है। सर्ग विसर्ग और स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति रूप जो जितना 10 लक्षण किया उनमें से 9 लक्षणों वाला जो भागवत है उसका परम आधार ये 12वां स्कंद है। राजा ने पूछा कि महाराज भगवान जब चले गए तब यहां पर किसका शासन हुआ और किसका शासन होगा? कहते हैं भगवान के चले जाने के बाद तो भाई यहां सब राजाओं में खिचड़ी होने लग गई, मार काट मच गई। कोई राजा अपने मंत्री को बनावे तो वह मंत्री ही राजा को धोखा दे देवे, राजा को मार देवे, फिर मंत्री का शासन चले, फिर उस मंत्री को उसका सेवक मार देवे। ऐसे कभी प्रद्योतनों का शासन चला तो कभी शिशुनागों का शासन चला, इस प्रकार से ये शासन चले। कहते आगे जाकर के यहां चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके द्वारा मौर्य यहां शासन करेंगे। मौर्यों का शासन 130 वर्ष तक चलेगा, उसके बाद सुंग है उनका शासन चलेगा, फिर कानवायनों का शासन चलेगा, इस प्रकार से गौरों का, तुर्कों का यहां पर शासन चलेगा। कहते हैं ये सब शूद्र प्रधान राजा होंगे, सब धर्म कर्म सब लुप्त हो जाएगा। दोनों बात है, कलयुग की जो ये स्थिति ऐसी है भाई, जब कलयुग आता है तब तो धर्म है, सत्य है, शौच, क्षमा, दया, ये सब लुप्त होने लगते हैं। कलयुग में केवल जन्म और गुण धन के ऊपर टिके रहते हैं। न्याय व्यवस्था में भी धन ही काम आता है, और शादी विवाह में केवल पति पत्नी की रुचि को ही देखा जाता है, और व्यवहार के अंदर जो जितना ज्यादा मायावी छली कपटी होता है वही चतुर माना जाता है। स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है वही प्रेम माना गया है। ब्राह्मण का चिन्ह केवल अब यज्ञोपवीत रह जाता है, ये कलयुग का रूप है। आश्रमों में भी चले जाओ, जितने ऊंचे ऊंचे आश्रम है केवल बाह्य चिन्ह उनके पास रह गया है। लोगों के व्यवहार में देख लो कि जो जितना गरीब है वो उतना ही लोगों के लिए निंदनीय है, वही असाधु है, और जो जितना ज्यादा दम्भी है वही उतना साधु है, माने वही श्रेष्ठ है। दूर जितना जल है वही तीर्थ माना गया है, और लावण्यम केश धारणम और केशों की तरह तरह की कटिंग बना बना करके रहना, यही लोगों के अंदर सुंदरता रह गई है, स्त्रियों में यही सुंदरता रह गई है। और स्वार्थ, लोगों का केवल पेट भराई रह जाए, इसी का नाम स्वार्थ है, और जितनी ज्यादा धृष्टता की जाए उसी को ही कलयुग में सत्य मान लिया है। ऐसा है, कलयुग जब बढ़ता है उस समय में बरसातें होती नहीं है, और सर्दी से गर्मी से इनसे लोग प्रताड़ित रहते हैं, और प्रजा जब क्षीण होने लगती है, वर्णाश्रम धर्म जब लुप्त होने लगता है, तब भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं। ऐसा कलयुग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राजा भी लुटेरे बन जाएंगे, चोरों के हाथ में सत्ता चली जाएगी, हिंसकों के मन से सदा दया का जब नाश हो जाएगा, और वे मनुष्यों पर तरह तरह का अत्याचार करेंगे, शूद्र प्रायेषु वर्णेषु, सारे वर्णों में प्राय शूद्रता छा जाएगी, और गायों के अंदर बकरी जितना दूध आने लगेगा, तब समझना कि घोर कलयुग आ चुका है। मनुष्यों की आयु भी केवल 10-20 और 25 वर्ष के बीच में रहेगी। ऐसे समय में भगवान संबलक ग्राम में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर पर कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वे भगवान एक शीघ्रगामी घोड़े पर विराजमान होकर अपने हाथ में तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। जो जो राजा लोग यहां पाप करने वाले हैं उनको भगवान करोड़ों करोड़ों की संख्या में मार करके नष्ट कर देंगे। जो भगवान से विमुख है वे सब वहां नष्ट हो जाएंगे। जिनके मन में जरा सी भी भक्ति है, थोड़ा भी त्याग है, थोड़ा भी वैराग्य है, उनके मन में जो कलयुग का वातावरण पैदा होता है भगवान की पवित्र हवा से, वे सब लोग पवित्र हो जाएंगे और कलयुग के वातावरण से वे मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद तत्काल सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ये कल्कि की बात है। देखो राजन, ऐसे ऐसे राजा लोग जब होते हैं तब उनमें दो वंश मैंने तुमको सुनाया, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में देवापी नाम मरु नाम के राजा वे जो कलाप ग्राम में रह रहे हैं, चंद्रवंश में देवापी हैं जो भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं। ये दोनों महापुरुष यहां आएंगे, और वासुदेव के द्वारा शिक्षित होकर फिर वर्णाश्रम की रक्षा करेंगे और फिर प्रजा का विस्तार होगा। देखो ये सब क्रम कोई एक बार नहीं राजन, ये तो क्रम चलता ही रहता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, कली के बाद फिर सतयुग, ऐसे क्रम में न जाने कितने कितने राजा लोग होते हैं। और उस समय में पृथ्वी बिचारी घबराती है कि देखो देखो इन राजाओं की क्या दुर्दशा होती है, लोग ये राजा लोग मुझे मेरा मेरा मान मान करके कितनी लड़ाई करते हैं, भूताद्रुक सब प्राणियों के साथ द्वेष करते हैं, ये मानते हैं इतनी पृथ्वी हमारी, इतनी पृथ्वी हमारी। वो ये नहीं सोचते कि भाई दूसरे की मृत्यु के बाद ये पृथ्वी तुम्हारी है तो तुम्हारी मृत्यु के बाद यही पृथ्वी और किसी की भी होने वाली है, इतना ये विचार ही नहीं करते हैं। पानी के बुदबुदों के समान पैदा होकर नष्ट होते रहते हैं और तरह तरह से अत्याचार करते हैं। कैसे कैसे बड़े बड़े सम्राट हो गए, महाराज पृथु हुए, पुरुरवा हुए, गादी हुए, नहुष हुए, भरत हुए, मानधाता हुए, ऐसे ऐसे पुरुष हुए, उनके पास भी ये पृथ्वी नहीं रही, हिरण्यकश्यपों के पास नहीं रही, लोक रावण रावण है, सारे लोगों को रुला देने वाला, अपने अधीन करने वाला रावण, उसके पास भी मैं नहीं रही, तो और लोगों के पास क्या रहने वाली हूं। ममता मई अवर्तंत कृत्वोचिर मर्त्य धर्मिण है कथा वशेषा काले न यह कृतार्था कृता विभो। वास्तविक उनका प्रयोजन था परमात्मा की प्राप्ति, वो तो उनकी हुई नहीं, और अकृतार्थ होकर के मेरे अंदर ममता करके व्यर्थ ही वे जीवन धारण किए, उनका जीना भी व्यर्थ और उनका मरना भी व्यर्थ। इस प्रकार से पृथ्वी सोचा करती है। देखो परीक्षित, हमने तुमको ये सब कथाएं सुनाई है, इनमें पारमार्थिक सत्यता इतनी है कि सब परमात्मा का स्वरूप है, बाकी और से कोई लेना देना नहीं। भगवान की हमने आपको कथा सुना दी है, भगवान के अंदर इस प्रकार से जो मन लगाते हैं वे भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए हमने आपको कथा सुनाई है कि महाराज ये कलयुग का दोष तो बढ़ता चला जा रहा है, हे गुरुवर इस कलयुग के दोष से हम कैसे मुक्त होवे। सुखदेव जी कहते हैं कि वास्तव में राजन कलयुग है बड़ा भयंकर है, सत्य दया दान तप ये चारों सतयुग के अंदर तो बढ़ते हैं, फिर त्रेता में द्वापर में आते आते नष्ट होते होते कलयुग के अंदर तो भाई धर्म के तीन चरण तो एकदम नष्ट हो जाते हैं और सत्य पर भी आघात होने लगता है, उस समय में मनुष्यों की बहुत बुरी दशा होती है। देखो ये कोई समय पाकर नहीं होता है परीक्षित, ये मनुष्यों के अंदर भी चारों युग पैदा होते ही रहते हैं। जब कभी भी मन सात्विक स्थिति में रहता है, मन में सात्विक विचार पैदा होते हैं, इंद्रियों से स्वाभाविक विषयों से संपर्क न करने की इच्छा होती है, बुद्धि में एकदम प्रसन्नता रहती है, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर सतयुग है। और जब धर्म अर्थ काम इनके करने की इच्छा पैदा होती है तब समझना चाहिए कि त्रेता युग हमारे अंदर पैदा हो गया है। और जब लोभ हो, असंतोष हो, मान की इच्छा हो, दंभ हो, और फिर मत्सरता हो, और काम्य कर्म करने की इच्छा हो, ऐसे समय में समझना चाहिए कि रजोगुण तमोगुण बढ़कर के हमारे अंदर द्वापर युग को बढ़ा रहे हैं। और जब भाई झूठ कपट तंद्रा निद्रा हिंसा और शोक और मोह दीनता ये सब पैदा हो तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर कलयुग पैदा हो गया है। और ऐसे कलयुग के लिए तो भाई उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते एक भगवान का नाम ही इस कलयुग के नाश करने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलयुग के अंदर हे राजन बहुत दोष है, लेकिन एक बड़ा भारी महान गुण है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत, कि उसमें श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से आसक्ति का त्याग करके और वह परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। अब देखो मैं तुमको चार प्रकार का प्रलय बताता हूं। देखो पहला प्रलय है ब्राह्म प्रलय, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। उस समय में ब्रह्मा जी की रात होती है, हाँ 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की रात्रि। जिस समय में ब्रह्मा रात्रि में सोते हैं तो सब कुछ ब्रह्मा में लीन हो जाता है, तो यह एक नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। लेकिन जब ब्रह्मा भी अपने कारण परमात्मा में लीन हो जाते हैं तब प्राकृतिक प्रलय होता है। उस समय में पहले वह कई दिनों तक वर्षा नहीं होती और नीचे से ये शेषनाग के मुख से आग निकलती है, तो ऊपर से तो सूर्य की गर्मी और पाताल के अंदर से शेषनाग के मुख से निकला हुआ वो अग्नि ये सब जलने लगता है। फिर सांवर तक मेघ बरसता है, सब कुछ जल में डुबा देता है। पृथ्वी जल में, जल है वो आग में, आग है वो वायु में, वायु है वो आकाश में लीन होते होते सब परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा के वहां पर न वाणी है, न मन है, न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, वहां पर केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार से प्रकृति का भी लय हो जाता है, यह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है परीक्षित। सबसे बड़ा जो लय है वो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति, जिसके बाद न कल्प में न सर्ग में कभी हमारा जन्म होवे, वो आत्यंतिक प्रलय होता है। देखो बुद्धि इंद्रियां विषय इन सब के अंदर एक ज्ञान है, एक बुद्धि में भी ज्ञान है और बुद्धि जिसका निश्चय करती है उसमें भी ज्ञान है, इंद्रिय में ज्ञान है, इंद्रिय जिस विषयों को ग्रहण करती है उनमें भी ज्ञान है और इसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसमें भी ज्ञान है। इन तीनों ज्ञानों की जब एकता होती है और इनका ज्ञाता जब उस अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके बाद फिर उस स्वरूप में दृढ़ हो जाने के बाद आदि अंत वाले से अपना कोई संबंध नहीं मानता है, ऐसी स्थिति में वो आत्यंतिक प्रलय माना जाता है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद फिर उसका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है और फिर वह एक सम रूप से अपनी जो आत्मा है, स्वरूप है, वही वही उसी उसी को वो देखता है। उसके लिए जगत की अलग से सत्ता नहीं रहती है। और यदि वो कहीं किसी को ये समझे कि जैसे आत्मा के प्रकाश से सब दिखता है ऐसे आत्मा भी किसी प्रकाश में दिखती है, तो आत्मा के लिए किसी और प्रकाश की कल्पना करें तो वो एक भी आत्मा के समान ही होगा। तो आत्मा के समान कोई दूसरा हो तो सत्य में कभी भी द्वैत नहीं होता है, सत्व है, सत्य है, वो एक ही रहता है। तो जो आत्मा का प्रकाशक अलग नहीं है, वो आत्मा का प्रकाशक स्वयं ही आत्मा है। जैसे सूर्य का प्रकाशक सूर्य ही है, इसी प्रकार से अपने स्वरूप का प्रकाशक भी अपना ही है। सोने को भैया कितने ही आभूषणों में बदल दो, वो सोना का सोना रहेगा। नाम रूप बदलेंगे, सोना नहीं बदलेगा। परंतु नाम और रूप पर जिसकी दृष्टि है वो सोने को क्या समझे। ऐसे ही अपने में से ही पैदा होने वाला अहंकार है, वो अपने स्वरूप को जब तक आच्छादित किए हुए रहता है तब तक इस आत्यंतिक प्रलय को वो नहीं समझता है। सूर्य से बादल पैदा होता है और हमारी आंखों को वो ढक देता है, हमारे और सूर्य के बीच में एक आड़ आ जाती है। इसी प्रकार ये जीव है जो अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, परंतु इसी जीव के अंदर से एक अहंकार पैदा होता है, वो अहंकार ही अपने स्वरूप के और बीच में परमात्मा के बीच में एक आड़ आ जाती है। उस आड़ के कारण से अपने को देख नहीं पाता है। हे परीक्षित, उसी आड़ को दूर करने के लिए छित्वा अच्युतात्मा अनुभव अवतिष्ठते, विवेक रूपी तलवार लेकर उस अच्युत में आत्मभाव स्थित करके और अपने स्वरूप का ज्ञान करके उस अंधकार को अपने में लीन करके आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे फिर दोबारा यहां संसार में जन्म लेना नहीं पड़े। ये तीन प्रलय और चौथा प्रलय वही हर क्षण जो प्रकृति नाश की ओर जाती है, ये नित्य प्रति जा रही, एक क्षण भी इसका अवरोध नहीं है, ये नित्य प्रलय है। इस प्रकार से हमने आपको सब प्रकार की कथाएं सुना दी है। संसार सागर से पार होने के लिए भगवान की इन कथाओं का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा के लिए जो कहा और ब्रह्मा ने नारद के लिए जो कहा, नारद ने व्यास जी को जो कहा, व्यास जी ने जो हमको कहा, वही आज हमने आपको बता दिया है। और हमारे ज्ञान का इतना विस्तार होगा परीक्षित, हमने आपको कोई सामान्य चीज नहीं सुनाई है, हमारे द्वारा सुनाया हुआ ये भागवत इतने विस्तार को प्राप्त होगा कि हमारे यहाँ सुनने वाले सूत जी है ये एक बार नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनियों को सुनाएंगे, उसके बाद ये ज्ञान का बहुत विस्तार होगा। अब मैं अपने हृदय की अंतिम बात बताता हूं। अब ये भागवत का अंतिम प्रकरण चल रहा है, अंतिम ज्ञान है, बड़े ध्यान से हम लोग इसको सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो इस श्रीमद् भागवत में हमने भगवान का वर्णन किया है, अवर्णनीय परमात्मा का वर्णन किया है, वर्णनातीत का वर्णन किया है, उनकी लीलाओं को हमने कहा है, जिनकी कृपा से ब्रह्मा पैदा होते हैं और जिनके क्रोध से शंकर पैदा होकर संसार को अपने में लीन कर लेते हैं, उन्हीं भगवान के विषय में हमने आपको बताया है। पर राजन, इतनी इन सब बातों को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर से यह पशु बुद्धि तो सदा के लिए दूर हो ही जानी चाहिए कि मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि तुम्हारे में नहीं रहनी चाहिए। क्यों? मरता वही है जो पैदा होता है राजन, न तो तुम पैदा हुए हो, और जो पैदा ही नहीं हुए तो फिर मरना तुम्हारे यहां कहां पहुंचेगा। जहां उत्पत्ति है वहीं ही विनाश है, उत्पत्ति से रहित है वहां पर विनाश की कल्पना ही नहीं है। न तुम बेटा बेटी वाले हो, न तुम पोता पोती वाले हो, न तुम राजा हो और न ही तुम परीक्षित हो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारा स्वरूप कुछ और ही है। अतः न तो तुम पैदा हुए न तुम आगे जाकर पैदा होगे। जैसे स्वप्न के अंदर मनुष्य अपना सिर कटा हुआ देखता है और सोचता है कि मैं मर गया, लेकिन वो मृत्यु को भी देखने वाला है, ऐसे ही परीक्षित तुम अपने आप के सब के साक्षी हो। तो स्वप्न की मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसको हम जानने वाले हैं। इसी प्रकार से इस शरीर की मृत्यु भी स्वप्नगत शरीर के मृत्यु के समान ही इसके साक्षी होकर देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक हमारी मृत्यु नहीं है। मन के द्वारा तरह तरह से इंद्रियों से गुणों से संपर्क होने के कारण से एक मन में खलबली मस्ती है, मरने जीने का बहम पड़ता है। वास्तव में मरना जीने से अपना कोई लेना देना नहीं है। परीक्षित, तुम तो ऐसे दिव्य प्रकाश हो, प्रकृति से अव्यक्त से कार्य से सबसे तुम ऊपर उठे हुए हो, आकाश के समान सबको अपने आधार में रखे हुए हो, तुम अनंत हो, इसलिए अपने स्वरूप का तुम विचार कर अपने स्वरूप में तुम स्थित हो जाओ, भगवान वासुदेव का चिंतन करो। और ब्राह्मण के शाप के द्वारा जो तक्षक आएगा वो तक्षक जलाएगा जरूर, वो काटेगा जरूर, लेकिन वो काटना तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा परीक्षित, क्योंकि तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो। उलट काल को कह खात है हरिया गुरुगम हो, तुम काल के भी काल हो, काल की भी दाल तुम्हारे आने चलती है। मृत्यु नाम मृत्यु ईश्वरम, मृत्यु की भी तुम मृत्यु हो, तुम्हारा वो तक्षक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखो परीक्षित, तुम अपने स्वरूप के विषय में विचार करो, ये स्वरूप है, यही ब्रह्म है, यही तेजवान है और यही परम पद है और यही सबसे ऊंचा है, यही सर्वत्र है। इस प्रकार अपने आप में अपने आप को समझो और खाने दो तक्षक को, शरीर को खाएगा, जलाने दो तक्षक को, शरीर जलाएगा, लेकिन शरीर को जलाएगा, लेकिन तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारे तक उसकी आग पहुंचने की बात ही नहीं है। राजन, जो कुछ तुमने हमसे पूछा था सो बता दिया, अब बताओ और क्या तुम पूछोगे, क्या मैं सुनाऊंगा। अंतिम बात सुना दी, अब कोई तुम्हारे लिए पूछने की बात नहीं और मेरे लिए सुनाने की बात नहीं। एतन् निशम्य मुनिना विहितं परीक्षित व्यासात्मदेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पालमूलम् उपसृत्य नतेन मूर्ध्ना बद्धांजलिस्तमिदम् आस विष्णुरात। देखो, सुनाने वाले ने तो सुना दिया, लेकिन सुनने वाले पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये सुनने वाला भी तो टटोले अपने को। तो सूत जी महाराज कहते हैं, जब परीक्षित को इस प्रकार बड़े प्यार से स्नेह से सुखदेव जी महाराज ने अपनी सारी बात बता दी, तब वह परीक्षित अपने स्थान से उठा और उठ करके उसने श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा परीक्षित ने उनसे अपना निवेदन किया। परीक्षित ने कहा कि महाराज, सिद्धोस्मि, आपने जो मुझे बताया है मैं उससे सिद्ध हूं, माने जो आपने मुझे बताया है वो मैंने अच्छी तरह से उसको अपने हृदय में धारण किया है, आपने बड़ी दयालुता से हमको सुनाया है। आपने महाराज और किसी के विषय में नहीं, अनादि निधनो हरि श्रावित है, भगवान के विषय में आपने सुनाया है। भगवान कोई सुनने के विषय नहीं होते, लेकिन आपके मुख से तो वो निकल गए और हमारे कानों से अंदर आ गए, कितना विचित्र ये अद्भुत कार्य हुआ है। आप जैसे महापुरुषों के पुरुषों के द्वारा ऐसे करुणापूर्ण भगवान के विषय में सुना देना और संसार के ताप से संतप्त हुए प्राणियों के कल्याण के विषय में विचार करना कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप जैसे महापुरुष ऐसा अनुग्रह करने का स्वभाव बनाए हुए हैं। अब मैंने आपके श्रीमुख से ये पुराण संहिता सुनी है जिसमें आपने भगवान के विषय में बताया है, परंतु महाराज मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखता हूं। हे भगवान, हे भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे एक तक्षक नहीं, एक मृत्यु नहीं, सैकड़ों सैकड़ों तक्षकों से और सैकड़ों सैकड़ों मृत्युओं से मुझे लीश मात्र भी भय नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित जो हो गया हूं, अभयम त्वया दर्शितम, और कोई मैं मेरे साधना से नहीं, आपने जो मुझे जिस अभय पद पर पहुंचा दिया है इस कारण से मुझे कोई भी भय नहीं है। महाराज, आपकी आज्ञा है, मैं अपने मन का, अपने वाणी का, सबका निग्रह करता हूं, सबको सबका निग्रह करके एक परमात्मा का चिंतन करता हूं, मेरे चित्त से कामनाएं सदा के लिए समाप्त हो गई हैं, इस प्रकार से मैं अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं। अज्ञान के अंदर ही तो महाराज ये मृत्यु का दुख होता है, आपने अज्ञान को तो दूर कर दिया, ज्ञान और विज्ञान में आपने स्थित कर दिया, भगवान के चरण कमलों में आपने लाकर रख दिया, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि हमने 7 दिन तक इनको कथा सुनाई और उस कथा के सुनने के प्रभाव से इनके मन से ये मृत्यु का भय निकल गया, बहुत बड़ा काम हो गया। सुखदेव जी महाराज फिर वहां से रवाना हुए, उनके साथ में भिक्षुक लोग थे और भी कई संत महात्मा उनके साथ रवाना हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सुखदेव जी महाराज जिस समय में पधारे थे, पहले स्कंद के उन सुखदेव जी महाराज की तरफ जरा विचार करें और अब जो सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं उनके संग साथियों का विचार करें तो बिल्कुल उल्टी बात मिलेगी। वहां तो ग्रामीण बच्चों ने, ग्रामीण स्त्रियों ने चारों तरफ से उनको घेर रखा था, सब उनका तिरस्कार कर रहे थे। कोई मिट्टी फेंक रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई लकड़ी फेंक रहा था, कोई उन पर थूक रहा था, कोई तिरस्कार कर रहा था। वही सुखदेव जी महाराज उसी रूप में मस्त होकर भागवत गा रहे थे और वही सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाने के बाद अब भिक्षुओं के साथ में, संतों के साथ में, महात्माओं के साथ से, महात्माओं से घिरे हुए जा रहे हैं। तो ये भागवत का ही प्रभाव है कि भागवत को सुनाने के कारण सुखदेव जी महाराज की ऐसी विचित्र महिमा हुई। महाराज सुखदेव जी के पधार जाने के बाद राजा गंगा जी के तट के ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए, चटाई पर विराजमान हो गए, उनके सारे संदेह दूर हो गए और वे अपने स्वरूप में स्थित हैं। इधर तक्षक अपने स्थान से ब्राह्मण का रूप बना करके रवाना हुआ काटने के लिए परीक्षित को, तो बीच में उनको कश्यप जी मिल गए। कश्यप जी ने कहा कि हम महाराज परीक्षित के पास जा रहे हैं। तक्षक ने कहा क्यों जी? हम इसलिए जा रहे हैं कि हमको बहुत बड़ा धन देंगे, आज हम उनको जिला देंगे, माने तुम काटोगे हम जिला देंगे, हमारे पास ऐसी विद्या है। तक्षक ने कहा ऐसा मत करना, संसार में जैसे जीना दुर्लभ है ऐसे परीक्षित जैसे कि मृत्यु महान दुर्लभ है। आज परीक्षित यदि मेरे काटने से मरेगा तो सदा के लिए अमर हो जाएगा। कश्यप तुम उनकी मृत्यु के बीच में मत आओ और उनको मरने दो। इस प्रकार से कश्यप जी को रोक दिया, बहुत सा धन दे दिया और स्वयं ब्राह्मण बनकर के वहां गया और जाकर के लोगों ने देखा ब्राह्मण आए हैं, जो आए वो परीक्षित के पास में जाकर बैठा और बैठते ही वो सर्प बनकर के उनको काट खाया और काटते खाते ही धू धू करके वहां पर आग पैदा हो गई। कहते अही गर लागनी ना बबू वह भस्मसात सद्य। देखते देखते ही महाराज परीक्षित का शरीर था वो वहीं पर जल करके भस्म हो गया, सब जगह हाहाकार हो गया। लेकिन देवताओं ने प्रसन्नता से दुंदुभियां बजाई और फूलों की वर्षा की और सब देवता कहने लगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ, इन्होंने ज्ञान सुना और ज्ञान में स्थित हो गए। जन्मे जय को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने फिर एक बड़ा भारी वहां पर यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर सर्पों का आह्वान किया, तक्षक डर करके इंद्र के सिंहासन के नीचे चला गया। तब इंद्र के सिंहासन सहित जब उसका आह्वान किया ही जाने वाला था कि बृहस्पति ने आकर उनको रोक दिया कि ऐसा मत करो, इस प्रकार से इंद्र को और तक्षक को तुम हवन के अंदर जलाओगे तो यह अच्छा नहीं रहेगा, क्रोध को छोड़ दो, बैर को छोड़ दो, संसार में जीना मरना अपने अपने भाग्य से लेकर आते हैं। जन्मे जाए तक्षक को अपने पिता का हत्यारा मत मानो, तुम्हारे जैसे पिता की मृत्यु तो भाई बड़े बड़े योगी लोग भी चाहते रहेंगे लेकिन उनको भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तुम्हें तो गौरव करना चाहिए कि हमारे पिता इस प्रकार से मरे। देखो शौनक जी, ये हमने आपको कथा सुनाई है, कोई मरने वाला है, कोई मारने वाला है, कोई जीने वाला है, ये सब क्या है? ये भगवान विष्णु की माया है, माया के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्य को मेरा तेरा का दुष्ट भाव छोड़ करके, देह के आदि से आसक्ति का त्याग करके उन्हीं मायापति का ध्यान करना चाहिए। शौनक जी कहते हैं महाराज वेदों का विभाग वेद व्यास ने किया, कैसे किया कि भाई ये सारे वेद भगवान से पैदा हुए हैं। पहले पहले अक्षर पैदा हुए, अ उ म त्रिमात्रिक ओंकार पैदा हुआ, उस ओंकार के बाद फिर अक्षर पैदा हुए और फिर उसके द्वारा फिर वेद पैदा हुए। तो वेदों का प्राकट्य भगवान से हुआ है और वही भगवान के कई भक्त हुए जिन्होंने वेदों को अनेक रूप से अपने पास रखा था। फिर वेद व्यास जी महाराज ने आकर इसका विभाग किया, वेदम चक्रे चतुर्विधम, चार उनके रूप बने, अपने कई शिष्यों को उन्होंने वेदों को पढ़ाया है। उन्होंने चार शिष्य प्रमुख रूप से स्वीकार किए। पहल था उनको तो उन्होंने ऋग्वेद सिखाया और वैशंपायन थे उनको उन्होंने यजुर्वेद सिखाया, जैमिनी को उन्होंने सामवेद सिखाया और सुमंत को उन्होंने अथर्व वेद पढ़ाया। फिर ऋषियों इन व्यास शिष्यों के और भी शिष्य बने, तरह तरह से फिर शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रही। इनमें मैं आपको बताऊं कि वैशंपायन के चरकाध्वर्यु नाम के शिष्य थे, वे किसी गुरुजी के पाप के प्रायश्चित में लगे हुए थे। इतने में ही याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गुरुजी आप इन अल्पज्ञों से क्या प्रायश्चित कराते हो, मेरे से करवाते, मैं बहुत मंत्रों को जानता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, ब्राह्मणों का तुमने अपमान किया है, हम तुमको जो विद्या पढ़ाए वो सारी विद्या हमारे सामने रख दो, तुम हमारी विद्या के अधिकारी नहीं हो। तुम अपने को ज्यादा मानते हो, दूसरों को कम मानते हो, यही तो अविद्या थी। अभी तक तुम हमारी विद्या को वास्तविक रूप से समझ नहीं सके। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज जितनी विद्या पढ़ी थी सब उगलने लग गए हो, उगलने लग गए तो भाई अब उल्टी को कौन लेवे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देखा कि ओहो, याज्ञवल्क्य जी के पास तो बड़ी विलक्षण विद्या है, हम ले लेवे, लेकिन मनुष्य रूप से यदि उल्टी लेंगे तो बुरा लगेगा। तो सब तीतर बनकर के वो सब उनकी उल्टी को ले लिए, तब वो तैत्रेय संगीताएं बनी है। याज्ञवल्क्य जी ने फिर सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप मुझे यजुर्वेद की शिक्षा दो। फिर सूर्य भगवान ने घोड़े के रूप में उनको शिक्षा दी है, तब वासनेय संगीता बनी है, फिर उन्होंने अपने शिष्यों का विभाग किया है। तो देखो, वही वेदव्यास जी महाराज वेदों का तात्पर्य पुराणों में लाने के लिए 18 पुराण बनाए थे। पुराणों के लक्षण तो हम तुमको सुना चुके हैं शौनकादि ऋषियों, बड़े पुराणों में 10 लक्षण होता है, छोटे पुराणों में 5 लक्षण होते हैं। उन पुराणों में तरह तरह के ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, इस प्रकार से 18 पुराण है। जो ये मार्कंडेय पुराण का नाम सुना तो शौनक जी ने प्रार्थना की कि महाराज हमने तो सुना है कि मार्कंडेय जी तो कल्प के अंत में भी थे, जबकि वो हमारे ही आयु में है, हमारे ही समान है, तो जैसे हम कल्प के अंत में नहीं रह सके तो वो कैसे रहे, उनका क्या इतिहास है। कहने लगे देखो, मार्कंडेय जी महाराज एक बार तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते इतना लंबा चौड़ा समय व्यतीत हुआ कि एक तरह से वो कालातीत हो गए, 6 मनवंतर बीत गया उनके तपस्या करते हुए पुष्पभद्रा नदी के किनारे। फिर इंद्र ने आकर उनकी तपस्या में बाधा डाली, तरह तरह से अप्सराओं को और इनको भेजा। कहते हैं उस समय में कोई भी अप्सराओं का इनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, तब सब लज्जित होकर के इंद्र के पास में चले गए। नारायण को मालूम चला कि यह एक ऐसे ऋषि हैं कि जिनके ऊपर इंद्र की अप्सराओं का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वे नर नारायण आए और दर्शन देने के लिए उनके बोले कि देखो हम तुम्हारे लिए आए हैं, कोई हमसे वरदान मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज आप जब आ गए अब हमें वरदान की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी यदि आप वरदान देने के लिए कह रहे हैं तो हम आपकी कोई विचित्र माया देखना चाहते हैं। नर नारायण हंसे, कहने लगे भाई माया से तो पार होने की बात होनी चाहिए, आप माया देखने की बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, आप जैसों को माया दिखा भी देंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। जैसे किसी वैराग्यवान व्यक्ति के पास खूब धन हो तो धन जाने पर उस वैराग्यवान के मन में कोई असर होने वाला नहीं, और किसी विषयाशक्त के पास धन जाए तो धन उसका नुकसान करने वाला है। तो देखा कि मार्कंडेय के पास में माया आएगी तो कोई हर्जे की बात नहीं है, तो उन्होंने तथास्तु कह दिया और वे चले गए। वे अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन की बात है कि पूजा करते करते देखा कि बहुत जोर से आंधी आ रही, तूफान आया, सब डूब गए, सब पर्वत है, कंदरा, पृथ्वी, सब डूब गए। उतने में देखा कि एक बटका वृक्ष है, टीले पर बटका वृक्ष है, और उसके एक पत्ता है, पत्ते पर छोटा सा बालक है, और छोटा सा बालक श्वास ले रहा है। तो मैं उसके श्वास में चला गया और वो देख रहे, मैं श्वास में चला गया, हजारों लाखों वर्षों तक उसके श्वास में ही भटकता रहा। फिर उन्होंने श्वास को बाहर निकाला तो मैं भी बाहर आ गया। उनके श्वास तो चलते ही रहते थे, बहुत वर्षों के बाद मैं बाहर निकला हूं। मार्कंडेय जी देख रहे हैं कि फिर मैं उसी पुरुष को, उस बालक को ऐसे ही श्वास लेते देख रहा हूं। बालक के सामने उन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़े। इतने में ही न तो वहां तूफान है, न बालक है, न वो वटवृक्ष है, कुछ नहीं है, वो अपनी कुटिया है। तो मार्कंडेय जी महाराज उस समय में भगवान की माया समझ करके भगवान को प्रणाम किए और वहां पर अपने आश्रम में रहने लगे। भगवान शंकर एक बार पार्वती के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे। भगवान शंकर को संतों के दर्शन की बड़ी इच्छा रहती है। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो पार्वती, यहां एक मार्कंडेय ऋषि है, बड़े श्रेष्ठ ऋषि है, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागम है, वह संतों का समागम हो जाए, इससे बढ़कर और क्या क्या दूसरे मनुष्यों का कोई लाभ होगा, चलो मार्कंडे से मिल लेते हैं। मार्कंडेय जी के पास गए, मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर की बड़ी सेवा की, बड़ा अच्छा आतिथ्य किया, और अंत में भगवान शंकर ने कहा कि मार्कंडेय जी हम आपको कुछ वरदान देने के लिए आए हैं, कोई आप हमसे वरदान मांग लो। ऋषि ने कहा महाराज अब मैं वरदान नहीं मांगूंगा, एक बार मैंने वरदान मांगा माया के अंदर में, ऐसे थपेड़े देखने के लिए मैंने वरदान मांगा, ऐसे थपेड़े खाए, कभी तो मैं मगरमच्छ के मुंह में गया, कभी किसी के मुंह में गया, कभी बालक के मुंह में गया, महाराज अब मुझे माया देखनी नहीं, आपके दर्शन हो गए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह नहीं कुछ तो देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा तो महाराज अब बस हमारे मांगने के लिए इतनी बात है, एक तो भगवान में और एक भगवान को प्राप्त होने वाले संत महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, पार्वती के साथ में वहां से रवाना हुए, मार्कंडेय जी की चर्चा करते रहे। देखो मार्कंडेय जी कैसे निर्लोभी है, इस प्रकार से मार्कंडेय जी की बात आई है। सौनक जी ने कहा महाराज भगवान का स्वरूप क्या है, उनकी पूजा वगैरह कैसे की जाती है। देखो भाई ये विराट रूप है, सौनकादि ऋषियों सब भगवान का ही है, पृथ्वी है तो भगवान का चरण है, ये आकाश है तो भगवान की नाभि है, सूर्य है तो ये भगवान का नेत्र है, वायु है तो ये भगवान का श्वास है, दिशाएं हैं भगवान के कान हैं, ऊपर का होठ है वो लज्जा है, नीचे का होठ है वो लोभ है, और ये जो कुछ आपको हंसी माया दिखती है ये भगवान की हंसी है। इस प्रकार से सारा संसार भगवान का तो रूप है, ये कौस्तुभ मणि क्यों धारण करते हैं। जितने जीवों का जो प्रकाश है, चाहे वो ज्ञानमय प्रकाश, चाहे वो आनंदमय प्रकाश, चाहे सत्तारूप प्रकाश, ये कौस्तुभ मणि के बहाने से सबको बताते हैं कि सारे जीवों को मैं अपने कलेजे से छिपाए रखता हूं, ये कौस्तुभ मणि का धारण करने का तात्पर्य है। और भगवान ने श्रीवत्स का चिन्ह क्यों धारण कर रखा है, श्रीवत्स का इसलिए धारण कर रखा है कि एक दिव्य प्रकाश को अपने पास में रखते हैं, तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात, कौस्तुभ मणि की जो प्रभा है उस प्रभा को श्रीवत्स के रूप में धारण करते हैं। अच्छा वनमाला को क्यों धारण किया है, और वनमाला ये तो नाना प्रकार के गुणों वाली है, तो बताते हैं कि सारे के सारे गुण है और दिव्य जितने मेरे गुण है, ऐश्वर्य हो माधुरी और दिव्य आदि दिव्य गुण हो, उन सब गुणों को बताने वाली उनकी ये माया है, ये वनमाला है जो दूर दूर तक सुगंधी फैलाती है। अच्छा इनका ये वस्त्र क्या है, पीला वस्त्र क्या है, ये पीला वस्त्र बताते हैं कि मैं वेदों को धारण करने वाला हूं, पीतांबर से वेदों को धारण करने वाले बता रहे हैं। अच्छा इनके मकराकृति कुंडल क्यों है, कि भाई एक कान में एक कुंडल, दूसरे कान में दूसरा कुंडल, तो एक के द्वारा सांख्य को मान रहे हैं, एक के द्वारा योग को बता रहे हैं। अच्छा मुकुट तो माने भगवान बताते हैं कि भाई जो परमेष्ठी पद है वो मेरे पास ही है, इस प्रकार से मुकुट को धारण करते हैं। और शंख चक्र गदा पद में है तो कहते हैं अत्यंत सत्व गुण है, अत्यंत जो सत्व है उसको बताने के लिए उन्होंने पद्म को धारण किया है। जैसे पद्म निर्लेप होता है, भगवान के हाथ में वही रहता है जो संसार से निर्लेप रहता है। और तेजस तत्व की प्रतिमूर्ति में वे सुदर्शन को धारण करते हैं, जल तत्व की प्रतिमूर्ति में वे शंख को धारण करते हैं, और अग्नि तत्व के रूप में वे गदा को धारण करते हैं। इस प्रकार से भगवान धारण करते हैं, इसे और इनकी पूजा की विधि पहले बताई दी है। सोनकादि ने कहा कि महाराज ये जो सौरगण के अलग अलग देवता, अलग अलग सर्प और अलग अलग महीने आपने पहले बताए थे कि हाँ जितने भी महीने हैं इनमें इन 12 महीने में इनमें 7 प्रकार के राक्षस माने असुर और ऋषि और सर्प ये सूर्य के साथ में चलते रहते हैं, और 12 महीने तक चलने के कारण से फिर सूर्य की स्तुति करते हुए चलते हैं, सारे जगत को प्रकाश मिलता है। तो देखो सोनकादि ऋषियों मैंने आपको जो भागवत सुनाई है, अब मैं सनातन नर नारायण को, भगवान कृष्ण को और वेद और वेद व्यास जी को, सुखदेव जी को सबको प्रणाम करके आपको अब मैं अंतिम बार सारी भागवत का संक्षेप में सुना देता हूं, संक्षिप्तीकरण सुना देता हूं। भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत है, इसलिए सौनकादि ऋषियों यहां तो सुनेवे को और सुनना चाहिए, सुनने में बड़ा भारी लाभ होता है, बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि इस भागवत में सर्व पाप हरो हरे, सारे पापों के नाश करने वाले भगवान का जो वर्णन है। प्रारंभ में भाई व्यास जी का और नारद जी का संवाद है, उसके बाद महाराज परीक्षित के जन्म का इतिहास है, उसके बाद ब्राह्मण का उनको शाप लगा है, और उसके बाद सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं, प्राय उपवेश के लिए परीक्षित बैठ गए। तब उनका सुखदेव जी महाराज से अपना पहला प्रस्ताव रखा गया, पहला प्रश्न रखा गया है। ये पहले स्कंद की कथा है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है। प्रारंभ के 4 अध्यायों में श्रद्धा तत्व का निरूपण किया गया है। फिर उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन 3 अध्यायों में, सृष्टि का भी, जीव का भी और परमात्मा के आविर्भाव का भी। और अंतिम 3 अध्यायों में उपपत्तियों का विवेचन है, किन किन युक्तियों से हम जाने कि जीव क्या है, परमात्मा क्या है और जगत क्या है। इन 10 अध्यायों में ये बात बताई है। उसके बाद तीसरा स्कंद जो सर्ग के नाम से है, मैत्रेय और विदुर जी के संवाद के अंतर्गत ये बताया गया है कि वहां ये सृष्टि किन तत्वों से पैदा होती है। मैत्रेय जी ने बताया कि सारी सृष्टि पैदा हुई, माने एक एक चीजें पैदा हुई, फिर इन सबको मिलाया, मिलाने कारण से विराट रूप बना है। इनके सब में मूल में हेतु परमात्मा ही है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं अपने संकल्प से, तो उनको संतोष नहीं हुआ। फिर पृथ्वी के उद्धार की मन में इच्छा हुई, मनु और शत्रुपा को बनाकर कि इन दोनों के निवास का कोई स्थान होना चाहिए। तब उनको पृथ्वी की याद आई, तो उनके नासिका से भगवान वराह ने अवतार लिया और भगवान वराह ने हिरणाक्ष का वध करके इस पृथ्वी का उद्धार किया। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार किया। इसी सृष्टि के विस्तार के अंतर्गत कर्दम का उपाख्यान, कपिल उपाख्यान आया है कि मनु के प्रियव्रत और उत्तानपा 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां हुई। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ, कर्दम के कपिल भगवान ने अवतार लिया। कपिल भगवान ने वहां ज्ञान की और भक्ति की, काल की और जीव की प्रार्थना और जीवों के 2 प्रकार के मार्ग, एक से तो वो आता नहीं, वापिस लौट करके नहीं आता, ऐसा अग्नि मार्ग और एक धूम्र मार्ग जिसमें सकाम भाव से कर्म करने पर लौटता है, दोनों मार्ग बताए हैं। इस प्रकार से सृष्टि तत्व के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अतः कपिल आख्यान 3 स्कंद में बताया गया है। 4 स्कंद जो विसर्ग है, जाने माने भगवान की सृष्टि में आकर जीव अपनी तरफ से जो सृष्टि बनाता है, धर्म पूर्वक, अर्थ पूर्वक, काम पूर्वक और मोक्ष पूर्वक जो इसका मार्ग है, वो एक सर्ग में विशिष्टता लाता है, इसलिए विसर्ग हो गया। 4 इसमें प्रकरण है। जो धर्म पूर्वक कार्य करता है तो वो विजयी होता है, और धर्म के बहाने से जो अधर्म करता है वह दक्ष के समान पतन को प्राप्त होता है। परंतु अधार्मिक व्यक्ति भी यदि वह अपने अधर्म को समझ लेता है और वापिस भगवान की शरण होकर के वो रहता है, तो उसका अधर्म नष्ट हो जाता है, फिर वो धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ये 7 अध्यायों में दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा है। और आगे 5 अध्यायों में ध्रुव उपाख्यान है। ध्रुव उपाख्यान में कामना का वर्णन है कि 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ही अध्याय है। उनके मन में थी कि मैं राजा की गोद में बैठूं, और जब वो कामना पूरी नहीं हुई तो इच्छा हुई कि सृष्टि के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठूं, और जब परमात्मा के दर्शन हो गए तब विचार किया कि सृष्टि का सबसे ऊंचा स्थान तो परमात्मा की शरण थी, हमने उसको छोड़ करके लौकिक ऊंचा स्थान ढूंढा, हमसे बड़ी भारी गलती हुई। इस बात से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये 5 अध्यायों में ध्रुव उपाख्यान आया है। और आगे 11 अध्यायों में पृथु उपाख्यान आता है, जो कि अर्थ का है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इनके द्वारा सारे संसार का भोग होता है, ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, व्यवहार होता है। तो महाराज पृथ्वी के उपाख्यान से सृष्टि को कैसा कैसा तत्व मिला, किन किन को क्या क्या मिला, ये सब वहां पर बता दिया गया। और अंत में पुरंजन उपाख्यान सुनाया है। उसमें 4 सगुण के अध्याय, 4 निर्गुण के अध्याय है। 2 पहले आते हैं जो शंकर भगवान प्रचेताओं को बताते हैं, और 2 अंत में आते हैं कि जहां नारद जी महाराज उपदेश देते हैं। और बीच के जो 4 अध्याय है वो निर्गुण भक्ति के हैं, निर्गुण उपासना के है, जहां पुरंजन उपाख्यान प्रारंभ, जहां पुरंजन उपाख्यान कहा जाता है। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बताने वाला 4 स्कंद हुआ। 5 स्कंद में प्रियव्रत की कथा चलती है, और उसमें ऋषभ उपाख्यान, भरत उपाख्यान के साथ फिर महाराज परीक्षित सृष्टि के विस्तार के लिए पृथ्वी के स्वरूप के बारे में पूछे हैं, तो लंबा चौड़ा पृथ्वी का स्वरूप बताया। और उतना ही जितनी पृथ्वी है, जैसे मटर और चना की दाल जैसे नीचे का भाग होता है वैसा ही ऊपर का भाग बराबर, ऐसे जितना पृथ्वी है उतना ही ऊपर अंतरिक्ष, कहां कहां कैसे कैसे जीवों की स्थिति है बताई। और सब जगह भगवान के आराधक हैं और सब जगह भगवान आराध्य है, ये बात सुखदेव जी महाराज ने बताई। और अंत में फिर नरकों की बात बताई कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके कैसे कैसे कर्म करके जीव नरकों को भोगता है। इसके साथ 5वां स्कंद समाप्त हुआ। 6 स्कंद में प्रारंभ में जब ये राजा परीक्षित नरकों का वर्णन सुनकर घबराते हैं और पूछते हैं कि महाराज फिर तो प्रायश्चित कैसे करें, चारों तरफ जैसे कोई आदमी आग के अंदर फंस जाए, निकलने का रास्ता न दिखे, ऐसे अपने आप को असहाय समझकर परीक्षित ने जब प्रश्न किया है तो बड़े आश्वासन के साथ उन्होंने अजामिल उपाख्यान सुनाया है। ये पोषण का स्कंद है। अजामिल उपाख्यान से बताया कि पुत्र के बहाने से लिया हुआ नाम कितना विचित्र अजामिल के ऊपर प्रभाव डाला कि अंत में सबको छोड़कर गंगा जी के किनारे जाकर भगवान का नाम लिया और वह स्वार्गिक पार्षदों के साथ में बैठकर विमान में बैठकर चला गया। इस प्रकार से नाम की बात बताई और बताई कि देवताओं ने गुरु जी का अपराध कर दिया, लेकिन भगवान ऐसे कृपावत्सल, ऐसे कृपावत्सल कि उस अपराध की तरफ भगवान ने ध्यान नहीं दिया और नारायणी विद्या माने नारायण कवच के द्वारा इंद्र का उद्धार किया, इंद्र को विजय दिलाई और फिर वृत्रासुर के अंदर शंकर भगवान का भी अपराध कर दिया वृत्रासुर ने, चित्रगुप्त ने, तो भी उसका उद्धार किया। इस प्रकार से ये भगवान के पोषण की बात बताने वाली कथाएं छठे स्कंद में आई। सातवें के अंदर तीन प्रकार के प्रकरण, एक पहले प्रकरण में दुर्जनों की वासना, आसुरी वासना कैसी होती है, धर्म को मत मानो, गौओं को मत मानो, वेद की बात मत मानो, वर्णाश्रम को मत मानो, देवताओं को मत मानो, ब्राह्मणों को मत मानो, शास्त्र को मत मानो, इस प्रकार की जो वासना है उस वासना पर फिर भक्त की वासना कैसे विजयी होती है, इस प्रकार से प्रह्लाद जी का चरित्र आया जिसमें भगवान ने नरसिंह रूप से अवतार लेकर हिरणाक्ष का वध करके संपूर्ण सृष्टि पर ये बात, इस बात का प्रभाव डाल दिया कि अंत में आसुरी वृत्ति की विजय नहीं होती है, भक्ति की ही विजय होती है, भगवत भाव की ही विजय होती है। और अंत में फिर पांच अध्यायों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके कर्म बताए, तीन प्रकार का अद्वैत बताया। और तो और ये जो ऊती स्कंद है, तरह तरह की जिस प्रकार से धागों के द्वारा कपड़ा बनता है, ऐसे ही तरह तरह के जन्मों की तरह तरह की वासनाओं से जो जीव को शरीर मिलता है, तो उन वासनाओं के अंतर्गत नारद जी ने भी बताया, देखो मैं पहले कैसा था, पहले मैं गंधर्व था और फिर मैं दासी पुत्र वार, अब मैं ऐसा हूं, तो ये सब बनावट वासनाओं के कारण से होती है। तो ये वासना स्कंद था सातवां स्कंद। आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा है, कितने मनु हो गए, कितने मनु होने वाले हैं और कहां कहां भगवान ने कैसा अवतार लिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई और समुद्र मंथन की कथा सुनाई, भगवान का दिव्याति दिव्य मोहिनी रूप वहां पर प्रकट हुआ वो बताया, और फिर आगे वामन भगवान का चरित्र सुनाया और अंत में मत्स्यावतार का चरित्र सुनाया। नौवें स्कंद में दो विभाग है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये तो वास्तव में भक्तों का चरित्र है। जितने जितने राजाओं का नाम लिया ये सब राजा बड़े दिव्य है कि सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से इनका नाम निकला है। सूर्यवंश का वर्णन, फिर चंद्रवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन सुनते सुनते महाराज परीक्षित के मन में श्री कृष्ण के प्रति बड़ा दिव्य भाव पैदा हुआ। वैसे ही था क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण से बहुत उपकृत थे और फिर श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न किया गया तो भगवान के अवतार से लेकर तरह तरह की लीलाएं वहां पर सुनाई है, बाल लीलाएं सुनाई, चौर लीला सुनाई है, ब्रह्मा जी को मोहित करने की लीला सुनाई, इंद्र को वश में करने की लीला सुनाई, फिर रास लीला सुनाई और उसके बाद बंसुरी नाद वेणु नाद सुनाया और फिर कंस के ऊपर विजय प्राप्त करके और फिर आगे जाकर भगवान के ऐश्वर्य से भरी हुई लीलाएं, भगवान की विवाह की कथाएं ये सुनाई, भगवान के वंश की कथाएं सुनाई, तरह तरह का चरित्र सुनाने के बाद जब भगवान का इतना विलक्षण आधिपत्य है, सबको अपने में निरुद्ध करते हैं तो वेद आदि पर भी उनका निरोध चलता है, तो वेद स्तुति का प्रकरण भी सुनाया और भगवान का फिर अंत में जो प्रेम है, पत्नियों का जो प्रेम है, जो कि संयोग में भी वियोग का दर्शन कराने वाला, अरे वियोग में भी संयोग, संयोग में भी वियोग, दोनों प्रकार की जो बातें हैं ये दशम स्कंद में आई। तो अंतिम जो अध्याय 90 अध्याय है वो संयोग में भी वियोग बताकर भगवान के प्रति उन पत्नियों का अतिशय प्रेम बताया है। और फिर 11वां स्कंद तो मुक्ति का स्कंद है ही,